हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब सिद्धार्थ खुराना, जो कि पूरी तरह से वर्कहॉलिक था, अपने काम के आगे वो कभी कुछ नहीं देखता था, लेकिन उसका दिल आज विदेश जाने से साफ इनकार कर रहा था, क्योंकि वो झलक का पहले पता लगाना चाहता था। फिलहाल वो अभी कुछ सोच रहा था कि तभी उसके कमरे में उसकी दादी की आवाज़ सुनाई दी। दादी उसे ही बुला रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं बैठा था, तो फिलहाल वो दादी के पास चला गया था। दादी को भी ये खबर मिल चुकी थी कि उसके स्पेन वाली ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तब दादी सिद्धार्थ की ओर देखकर फ़िक्र भरी आवाज़ में आहिस्ता से बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें फटाफट से वहां जाना चाहिए। फिर दादी ने आकांक्षा की ओर देखकर चंचलता से बोली, एक काम करो, इस आकांक्षा को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि कहीं दादी सोच रही थी कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो शायद एक दूसरे का ज़्यादा समय बिता सकेंगे। अब ये बात सुनकर आकांक्षा तो खुशी से चहक उठी। कहीं ना कहीं डेविल स्माइल करते हुए मन ही मन में सोचा कि शायद उसका बूढ़ी के पैरों में मालिश करने का आइडिया काम कर गया और बूढ़ी उससे इम्प्रेस हो गई। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ी तो उसकी खुशी छूमंतर हो गई। सिद्धार्थ के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि न तो वो स्पेन जाना चाहता है और न ही आकांक्षा को अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता है। कहीं इसकी वजह झलक तो नहीं? कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आकांक्षा का दिल एक बार फिर झलक की ओर से नफ़रत से भर गया, लेकिन एज़ यूज़ुअल अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए वो सिद्धार्थ की ओर देखकर फेक स्माइल करते हुए बोली, अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, मैं जल्दी से घर जाकर अपने लिए कुछ कपड़े पैक कर लेती हूँ और सीधा मैं तुम्हें बाहर मिलती हूँ, ठीक है? तो मुझे पिक करना मत भूलना। हालांकि वो जानती थी कि सिद्धार्थ उसे साथ लेकर नहीं जाना चाहता। सिद्धार्थ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो बिना किसी भाव के वहां खड़ा रहा। वहीं दादी ध्यान से सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन गौर से नोटिस कर रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने दादी को ये बात नहीं बताई थी कि शायद सिद्धार्थ का जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ खुराना के लिए उसका काम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था, लेकिन आज इतनी बड़ी बात होने पर भी, उसकी स्पेन वाली ब्रांच में कुछ होने पर भी सिद्धार्थ वहां नहीं जाना चाहता था, तो ये बात दादी को कुछ अजीब लगी। और आकांक्षा के जाने के बाद सिद्धार्थ ने दादी को घूरते हुए बोरियत से पूछा, आपने उसे मेरे साथ जाने के लिए क्यों बोला? तब दादी बेपरवाही से बोली, अरे ये क्या बात हुई, अरे भाई तुम्हारी उससे शादी होने वाली है तो तुम दोनों आपस में एक साथ समय बिताओ, तो इसलिए सोचकर मैंने तुम्हारे साथ उसे आने के लिए बोला। जैसे ही दादी ने ये बताया, अब सिद्धार्थ बिना कुछ बोले वहां से वापस बाहर निकल गया था, क्योंकि वो जानता था कि दादी को भी स्पेन वाली ब्रांच में कुछ गड़बड़ है इसकी खबर सबसे पहले मिल चुकी होगी। बाहर आकर उसने सीधा एक बार फिर रोनित को फोन किया और बेचैनी भरी आवाज में बोला कि वो जल्द से जल्द झलक के बारे में पता लगाए कि झलक इस वक्त कहाँ है और उसके सारे इन्फॉर्मेशन सिद्धार्थ को दे। अब रोनित चौंक गया और खुद को ये बोलने से नहीं रोक पाया, सर आप झलक को कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपका ही रूल है कि आपको आपके काम में कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही रोनित को अपनी बातों पर गौर किया, वाकई सिद्धार्थ झलक को पसंद करने लगा है। फिर वो रोनित को सफाई देते हुए बोला, जस्ट शट अप, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस बेवकूफ लड़की को पसंद करूंगा? हाँ, और वैसे भी वो लड़की इतनी बदसूरत है कि उसे तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, समझे तुम? और वैसे भी मेरे साथ इस वक्त मेरी मंगेतर आकांक्षा चल रही है, तो तुम आकांक्षा के लिए भी टिकट बुक करो। पहले तो सिद्धार्थ आकांक्षा को साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब रोनित के टोकने पर ना जाने क्यों उसने आकांक्षा के लिए भी रोनित को टिकट बुक करने के लिए कह दिया था। इससे वो ये जताना चाहता था कि वो आकांक्षा के साथ आगे बढ़ चुका है, झलक से उसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं रोनित तो जल्दी से ओके बोलकर फ़ोन काट दिया था, साथ ही साथ सिद्धार्थ के बारे में सोचने लगा कि आई होप मेरा बॉस खूबसूरत लड़की आकांक्षा के साथ ही आगे बढ़े, क्योंकि रोनित को भी बदसूरत झलक बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा सीधा अपने ओबेरॉय मैंशन में जा पहुंची थी अपने लिए पैकिंग करने के लिए, ताकि वो सिद्धार्थ के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन जैसे ही वह घर गई, उसने देखा कि मिस्टर एंड मिसेज ओबेरॉय का चेहरा उतरा हुआ था। उन दोनों को उतरा हुआ चेहरा देखकर अचानक आकांक्षा के दिल में एक डर सा समा गया और उनकी ओर देखकर बोली, क्या हुआ? क्या वो कमीनी एक बार फिर से बचकर निकल गई? तब मिस्टर ओबेरॉय ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। तब आकांक्षा ने सामने वाली दीवार पर मुक्का मारकर दिल की भड़ास निकालते हुए बोली, मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है, आखिरकार आप लोग झलक को सिर्फ छोटी मोटी चोटें क्यों देना चाहते हैं? आप लोग उसकी जान क्यों नहीं ले लेते? हालांकि आकांक्षा को गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार उसके पिता झलक की जान क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे, अगर वह बच गई, उसने हमारा राज सिद्धार्थ के सामने खोल दिया तो हमारा क्या होगा? आप लोगों ने सोचा इस बारे में? इस वक्त आकांक्षा को झलक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं झलक जिस तरह से बचकर निकल गई, इस बात से उसे डर सताने लगा था। अभी अभी तो वो सिद्धार्थ के साथ स्पेन जाने का प्लान कर रही थी और झलक के यूं फरार होने पर उसे काफी गुस्सा आया। अब मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे थे। भले ही वो आकांक्षा के लिए झलक को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो झलक की जान नहीं ले पा रहे थे। आखिरकार झलक उनकी अपनी औदाद थी। भले ही उन्होंने रमेश और सुरेश को आग लगाने को कहा था, लेकिन उन्हें बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि झलक बच गई है और सही सलामत है, तो उन्हें राहत मिली। वो अपनी बेटी की जान नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें डर था कि झलक उनके राज खोल देगी, क्योंकि ईशान ओबेरॉय ने सोचा था कि झलक को वह हमेशा हमेशा के लिए किडनैप करके शहर के बाहर एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद करके रख सकते थे, जिससे कभी किसी को भी झलक के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि झलक इतनी आसानी से उनके गुंडों के चंगुल से भाग निकलेंगी। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। तभी मिसेज नैना ओबेरॉय अपने पति की ओर फिक्र भरी नजरों से देखकर एकदम से बोली, अब आप यहाँ बैठे हुए क्या सोच रहे हैं? कुछ कीजिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि उर्वशी खुराना झलक को हमसे पहले ढूंढ ले। ये सब बोलते हुए उनकी जबान कांक रही थी। तभी मिस्टर ईशान ओबेरॉय ने अपना हाथ ऊपर उठाकर रहस्यमय अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि उसे रोकने के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता है। तब मिसेस नैना ओबेरॉय हैरानी से अपने पति की ओर देखने लगीं और हैरानी से बोली, अच्छा, कौन सा रास्ता? तब वो सोफे पर से उठ खड़े हुए और उनके कान के पास जाकर कुछ बोलने लगे। वहीं दूसरी ओर झलक एक अनजान लड़की की कार की डिग्गी में छिपकर कहीं तेजी से जा रही थी। उसे नहीं पता था कि ये कार कहाँ जा रही है। कितनी देर तक सफर करने के बाद अचानक एक जगह गाड़ी रुक गई। अब झलक का दिल घबरा गया, वो थोड़ी परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर इस लड़की की कार को घेर लिया हो और उन्हें शक हो गया हो। कहीं ना कहीं झलक का दिमाग यही सारी बातें चल रही थी। उस लड़की ने कोई आवाज नहीं की, उसने कार की डिग्गी नहीं खोली, इसलिए झलक की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई आवाज करे। फिर अचानक कुछ देर बाद झलक को कार की खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी, साथ ही साथ उस लड़की की चीख भी सुनाई दी। वो लड़की बोल रही थी, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इस बात से साफ था कि जरूर वो लड़की खतरे में थी। लाइक, शेयर, कमेंट करो दोस्तों, प्लीज कंजूसी मत करो।